ஓம் சாந்தி. பஹத் அச்சா பாபா கா கீத் பஜ ரஹா தா. மீரா பாபா, பாபா தோ பஸ் மீரா ஹே. கமால் ஹே ஷிவ் பாபா கி, பாப் தாதா கி, பாபா கே லாக்கோ பச்சே ஆஜ கி தாரீக் மே பாபா கோ பெச்சான் கர், பாபா சே சம்பந்த ஜோட் கர் சல் ரஹே ஹே. மீரா பாபா ஹர் பச்சே கே முக சே அநேக பார் நிகழ்த்தா ரத்தா ஹே, பரந்து கமால் யே ஹே பாபா கி கி ஹர் ஏக பச்சா யே சமஜ்தா ஹே கி பாபா மீரா ஹே. ஔர் ஹர் பச்சே கோ பாபா ப்ராக்டிகல் மே யே அனுபவ கராதா ஹே கி ஹா மே துமாரா ஹூ. கராதா ஹே நா, ஹர் கதம் ஹர் பல் சஹயோகி மததகார் பதம் குணா, ஹர் காரிய மே மதத் கர்னே வாலா ஔர் ஹமாரா சாத்தி பன்கர் கம்பைன்ட் பன்கர் சல்னே வாலா. ஐசே பாபா கே ஊபர் ஜித்னா குர்பான் ஜாயே உத்னா கம் ஹே. ஹமே பி பாபா நே அப்னா பனாகர் ஹமாரி ஜீவன் கோ ஹீரே துல்ய பனாயா, பத்மா பதம் பாக்யவான் பனாயா. இஸ்லே மே பி ஹர் பல் ஹர் செகண்ட் தில் சே பாபா கா சுக்ரியா மான்தி ஹூ ஔர் அந்திம் ஸ்வாஸ் தக் யே சுக்ரியா சமாப்த நீ ஹோகா. முஜே ஆஜ் குச் அப்னா நிஜி அனுபவ சுனானே கே லியே கஹா கயா. ये भाग्य प्राप्त हुआ जबकि मेरी आयु शरीर की 7-8 वर्ष की थी. आज 54 से 55 वर्ष हुए कि हम बाबा के बने. लौकिक माता पिता के साथ आना हुआ. उस समय साकार में बाबा और हमारी प्यारी मम्मा दोनों भी हाजिर थे साकार रूप में. मम्मा के साथ का ज्यादा पार्ट नहीं रहा. एक तो हमारी शरीर की आयु छोटी थी और हमारे आने के पश्चात 4 मास के बाद मम्मा ने अपना पुराना शरीर त्यागा. साकार बाबा के साथ 3-4 वर्ष रहने का, बार बार बाबा को मिलने का गोल्डन चांस मिला जो हर कल पर नोंद हो चुका है. मुंबई से हैं हम और बाबा प्रतिवर्ष मुंबई में ठंडी के दिनों में कभी 3 मास कभी 4 मास आकर के रहते थे क्योंकि तभी माउंट पर बहुत बहुत कम लोग थे. ये जो आदिवासी भील आदि राजस्थानी बहुत ही कम लोग और बहुत जबरदस्त ठंडी पड़ती थी। अभी तो पॉपुलेशन बढ़ गई, मकान बढ़ गए, तो उसमें भी थोड़ा डिवाइड हो जाती है ठंडी। तो तभी तो एकदम बर्फ जैसी ठंडी पड़ती थी। और हमारे ब्रह्मा बाबा वृद्ध अनुभवी 92 तक बाबा की उम्र रही। अंत में जी मुंबई में मुरली चलती थी, वहां जहां भी बाबा गए, ज्यादा से ज्यादा बाबा और मम्मा मुंबई में ही रहे, बाकी तो बाबा का 3-4 स्थान पर जाना हुआ ही है, तो वहां भी बाबा की मुरली रेगुलर चलती थी। तो जब हम ज्ञान में आए तो बाबा को पहले मिलने के लिए मुंबई में ही बाबा आए और हम गए थे। माताजी हमारी बहुत ही भक्तिन थी, घर में एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया था, व्रत उपवास भी बहुत करती थी। तो उनका ये भाग्य रहा कि जब वो बाबा के पास पहली बार चली और मैं भी उनके साथ थी, पिताजी भी थे, तो जैसे ही बाबा हमको पर्सनल मिले तो बाबा ने माताजी का पांव दबाया और पांव दबाते हुए बाबा ने कहा, बच्ची बाप को ढूंढ ढूंढ के बहुत थक गई हो ना, देखो अभी बाबा आ गया है। बहुत बहुत अति स्नेह प्यार बाबा का पहली बार में मिला। हमारी आयु छोटी होने के कारण बड़ों का बहुत ध्यान नहीं जाता था, बच्चों के हिसाब से ध्यान जाता था, फिर भी हमने अपनी रीति से शार्प बुद्धि होने के कारण सब याद भी रखा और अनुभव भी किया। मधुबन में भी बाबा के पास मिलने आए, हर टाइम बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी सौगातें दी, वाइट ड्रेस के भी कपड़े दिए, बोला बच्ची जब तुम सेंटर जाती हो तो ये वाइट ड्रेस पहन के जाने का, पहली बार गई तो रंगीन फ्रॉक दिया, उसके बाद बाबा ने वाइट ड्रेस दिया। और घर में स्टार्टिंग से ही गीता पाठशाला चली जो आज तक भी है। माताजी टीच करती रही, बहुत अच्छी टीचर रही, माता पिता को बाबा की पालना बहुत समीप से मिली, पिताजी को बाबा ने बिजनेस में भी बहुत अच्छी अच्छी राय दी, भविष्य आने वाली परिस्थिति परीक्षा जो बाबा जानते हैं उसको पहले से ही इशारा देकर पिताजी को बाबा ने बचाया, यहां तक राय दिया। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव साकार बाबा के साथ के, बाबा के साथ खेलना बैडमिंटन आदि या पत्ते भी खेलना और साथ साथ बाबा के साथ भोजन करना, तो ये सब अनुभव बाबा के साथ हुए। जब बाबा यहां बैठकर मुरली चलाते थे तो हम छोटे बच्चों को इधर साइड में बिठाते थे। मुझे याद है बाबा ऐसे मुरली चलाते थे और मैं यहां बैठी थी। आज भी जब सेंटर पे हॉल छोटे पड़ते हैं ना तो ऐसे बच्चों को साइड में बिठा देते हैं तो मुझे दुख होता था कि देखो हमको कैसे साइड में बिठा दिया, हमको तो बहुत प्यार है बाबा से। आज भी जब हमारे सेंटर पर हॉल छोटा होने के कारण भीड़ होती है और बच्चों को उठा के इधर उधर बिठाते हैं तो मुझे अपना बचपन याद आता है, तो दिल ही नहीं करता है उनको उठाने का। तो बचपन में बाबा की बहुत अच्छी पालना मिली। आगे बढ़ेंगे तो जब बाबा 1969 में जब भी बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए तो तब मेरी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। तो उसके बाद बाबा ने तुरंत ही ऊपर से प्रोग्राम दिया कि कन्याओं की ट्रेनिंग रखी जाए। मधुबन में बाबा के होते तो ये हॉल, एरोप्लेन वाला मकान, हवाई महल, बाबा का पुराना घर जो अभी बाबा का कमरा आदि थोड़ा ठीक ठाक किया हुआ, बिल्कुल सिंपल रूप में झोपड़ी बगीचे के अंदर, और सब जगह मिट्टी पत्थर था, किधर भी थल्ला बना हुआ नहीं। और फिर बाबा के होते होते ये थोड़ा सा सामने जो ट्रेनिंग का बिल्डिंग है उसको प्लानिंग किया हुआ था तो वो तुरंत बनाई गई। तो बाबा का एक ऊपर से संकल्प संदेश आया कि ऐसे कन्याओं की ट्रेनिंग रखी जाए। जनवरी में बाबा अव्यक्त हुए और अप्रैल में और मई में कन्याओं की ट्रेनिंग रखी गई, एक दो महीने वाली, एक एक महीने वाली। और ट्रेनिंग की जो टीचर है वो मुंबई की घाटकोपर की नलिनी दीदी, जिनको आप रोज मुरली में भी देखते हो, पीस ऑफ माइंड में सुनते हो, और बाबा ने उनका चित्र भी बनाया, हेयर नोईविल, सी नोईविल, टॉक नोईविल का। और हमारी भी दीदी जी वही है, वही है। तो ये भी एक मेरा भाग्य रहा। तो नलिनी दीदी को टीचर के रूप में बुलाया गया, साथ में चंद्रमणि दादी जी रहे। तो जब भी ट्रेनिंग कराने के लिए दीदी जी वहां से आ रहे थे तो मेरी स्कूल की छुट्टियां हुई थी, मई मास था, तभी टिकटों का तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, इजी मिल जाती थी, आज से 50 वर्ष पहले। तो दीदी जी ने मुझे पूछा कि तुम ट्रेनिंग में चलोगी? मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि सेंटर पर अच्छा लगता था, थोड़ा देवान का संस्कार से शर्म संकोच होता था, लेकिन दादियों दीदियों के समीप रहने की दिल भी करती थी। 10 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम 3 दिन मैं प्रकाशमणि दादी के साथ गामदेवी रहने गई, क्योंकि तब वो समय था बाबा के बहुत कम गिनती के सेंटर्स, तो सेंटर्स में जो टीचर्स रहती हैं वह भी सब एक दो को पूरे भारत में पहचानते थे, नाम भी एक दो का जानते थे, परंतु क्लास में जो विद्यार्थी आते थे उनको भी हम जानते थे। आज वो समय आ गया है, टीचर टीचर को नहीं पहचानती है, लेकिन तब के समय में स्टूडेंट्स को भी हम पहचानते थे, क्योंकि छोटा परिवार, संस्था नहीं थी, परिवार था, फैमिली थी। तो मुंबई में समझो अगर हम घाटकोपर में हैं और बहुत दूर, एक घंटा दूर गामदेवी के एरिया में प्रदर्शनी हो रही है, प्रदर्शनी भी बहुत बड़ी बात, तो हम घाटकोपर से गाइड बन के प्रदर्शनी में समझाने जाते थे, और अगर हमारे पास हुई तो वो लोग हमारे पास आते थे। इतने थोड़े से बाबा के बच्चे थे। तो इस प्रकार से मेरा दादी के साथ गामदेवी में इसीलिए रहने का भाग्य मिला कि वहां पे प्रदर्शनी रखी थी और मुझे छुट्टियां थी, तो मैंने वहां प्रदर्शनी समझाने के लिए प्रोग्राम बनाया था, दादी के पास रही। इतना प्यार किया 3 दिन दादी ने, जो मुझे अब तक भूलता नहीं है। आयु तो बहुत छोटी थी, 10 वर्ष की केवल, और उसके बाद प्रकाशमणि दादी जी के साथ काफी मेरा समीप का संबंध रहा। आगे की मेरी हिस्ट्री में भी दादी जी के साथ कई मौके मिले मुझे, इधर उधर जाने के लिए भी और अन्य भी बहुत लाभ मिले, वो मैं जितना आज शॉर्ट में सुना सकती हूँ उतना सुनाऊंगी। तो जब भी मैं ट्रेनिंग करने आई तो यहाँ पर नियम था उस ट्रेनिंग का कि 18 वर्ष के ऊपर जो कन्याएं हैं उनको ही ट्रेनिंग में लिया जाएगा। तो मैं तो छोटी थी, 14 वर्ष की उम्र ही नहीं थी 18 की। सब बहनें बड़ी बड़ी थी, उसमें हमारी आशा बहन, चंद्रिका बहन, मुन्नी बहन, सब ये जो भी निमित्त बनी है, अवधेश बहन, आरती बहन, ये सब उसमें थे, जयंती बहन, सब उसमें थे। अब मैं तो बहुत ही छोटी हो गई। और तभी प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी दो को बाबा ने ऊपर से वतन से फिक्स किया कि दादी और दीदी अभी संभालेंगे अपनी संस्था को। तो जैसे ही मनमोहिनी दीदी जी ने मुझे देखा तो मुझे मना कर दिया, बोला हम आपको ट्रेनिंग में नहीं रख सकते हैं। मैं थोड़ी दुखी हो गई, नाराज हो गई, रोने लगी। मैं तो ट्रेनिंग करके ही जाऊंगी बाबा, ऐसे ही मैं नहीं जाऊंगी। पर ऊपर वाले के पास तो हमारा पूरा भविष्य होता है। तो उन्होंने तो मना कर दिया, और जो भी सब बहनें आई थी, सब साड़ी वाड़ी लेके आई थी अपने साथ, मैं तो कभी जीवन में पहनी नहीं थी, आयु ही नहीं थी मेरी ऐसी। तो जब ही बाबा ने ओपनिंग किया, वो ऐसी ट्रेनिंग थी जिसका ओपनिंग बाबा ने किया, क्लोजिंग बाबा ने किया और बीच में एक बार बाबा आए, वो थी हमारी ट्रेनिंग, क्योंकि बाबा ने रखवाई थी। ये हिस्ट्री ऑल था, जैसे आप यहाँ बैठे हो ऐसे हम बैठे। तो जब शाम को ओपनिंग का समय हुआ तो मुझे तो बैठना ही था, तो मैंने क्या किया, किसी से साड़ी ले लिया और पहन लिया। पहनना नहीं आता था, कोई को बोला पहना दो करके, पहना दिया। मैं इधर ऐसे पहली लाइन में आके चुपचाप बैठ गई। बाबा आए, पहले बाबा ने थोड़ी वाणी चलाई, फिर एक एक कन्या बाबा के पास नजदीक आई, क्योंकि तभी तो हम अकेले बाबा को मिलते थे। तो जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम ट्रेनिंग लेने आई हो? मैंने कहा, बाबा मैं ट्रेनिंग में रहना चाहती हूँ, पर एक प्रॉब्लम है, बड़ी दीदी जी मुझे मना करते हैं, लेकिन मुझे तो रहना है, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी बिना ट्रेनिंग के। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम रहना चाहती हो? मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने कहा, अच्छा बाबा तुमको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे करके बाबा ने अपने हाथ से तिलक लगाया, सभी को बाबा ने तिलक लगाया। तो बाबा ने तिलक लगाया, तो बाबा ने लगाया, फिर कोई कुछ कह नहीं सका, बैठ गई। जो ट्रेनिंग का बिल्डिंग है सामने, वहां पर जो पूरा ऊपर का पोर्शन है वो हम कन्याओं के लिए था, और साइड का रूम है ऊपर 11 नंबर, वो नलिनी दीदी को दिया हुआ था। रात को हमारा सभी आपस में क्लास हुआ, चंद्रमणि दादी जी वगैरह थे, सबको ड्यूटी बांटा, बहुत कड़क ड्यूटी था। पूरा ट्रेनिंग के बिल्डिंग में, सभी कमरों में, पैसेज में झाड़ू फट्टा सब हमको करने का, अभी तो सब काम वाले हैं, सब हमको करने का, रोटियां बनाने हमको जाने का, कपड़ा धोने के लिए करने का, सब कुछ करना था। तो हरेक का ड्यूटी बनाया गया, और ड्रामा अनुसार हमारे घर में लौकिक में ज्वाइंट फैमिली थी, तो ज्वाइंट फैमिली के कारण मुझे उम्र भी छोटी थी तो कुछ मैंने काम ही नहीं किया था, रोटी नहीं बनाई थी कभी, सब्जी का तो प्रश्न ही नहीं है। और थी कजिन बहने थी घर में तो चांस भी नहीं आया था, झाड़ू आदि भी नहीं लगाती थी छोटी थी तो मुझे भी पूछा गया कि तुम क्या करोगी, सभी को पूछते थे तो सभी हाथ उठाते थे हम ये करेंगे हम ये करेंगे, मैं किसी में भी हाथ नहीं उठाती थी। तो दादी का ध्यान गया, बोला चक्कू तुम क्या करेगी, मैंने कहा मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम नलिनी दीदी के साथ उस कमरे में रहोगी ना, तो उधर का थोड़ा झाड़ू लगा के पट्टा मारने का। तो मैंने कहा ठीक है दादी मैं करेगी, बस मुझे उतना ही ड्यूटी दिया। बहुत लंबी कहानी है पर उसको मैं शॉर्ट कर रही हूँ। तो मुझे ट्रेनिंग में आदर्श ब्रह्मा कुमारी और सैंपल ब्रह्मा कुमारी नाम दिया, कि शोकेस में सैंपल रखे जाते हैं ना, और गुड़िया की तरह ऐसा हाइट भी नहीं था और साड़ी पहन करके घूमना तो एक अलग ही लग रहा था। फिर क्लासेस भी हो गए हमारे, फिर लास्ट में जब पूरा हुआ तो डिसीजन क्या लिया कि जो भी हम 30 कन्याएं थी सिर्फ 30, तो ऐसा फैसला किया कि जो जहां से आई है उनको वहां जाने का नहीं, कम से कम एक महीने के लिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। अब मेरी तो स्कूल चालू हो गई थी, जाना था, तो सबका फैसला किया, दिल्ली वाली जयपुर जाएगी, जयपुर वाली कानपुर जाएगी, कहाँ कहाँ प्रोग्राम बना दिया। मैं थोड़ा सा अंदर में ये हो गई कि अभी मेरा क्या होगा। तो चंद्रमणि दादी ने मुझे बुला कि शक्कू तुम कहाँ जाएगी, मैंने कहा दादी मैं तो मुंबई जाएगी, बोला नहीं चलेगा। मैं बोला दादी मेरी स्कूल चालू हो गई है मुझे पढ़ना है। दादी ने बोला एक महीना तो किधर भी जाना पड़ेगा, तो मैं बोला मेरे को प्रॉब्लम आएगा मैं नहीं जा सकती हूँ, ऐसा बात दादी से हुआ। फिर जब समाप्ति में बाबा आए थे तो बाबा को फिर से एक एक कुमारी मिलने गई इधर नजदीक, यहाँ से यहाँ एक एक आते थे, तो मैं भी बाबा के पास गई। तो बाबा ने मुझे पूछा ट्रेनिंग लिया, मैंने कहा बाबा ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा लगा पर वापस एक समस्या आ गई है। तो बोला क्या हुआ, तो मैंने कहा बाबा अभी ऐसे कहते हैं कि एक महीना सेंटर पे जाने का। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा नहीं बाबा कहते हैं जिधर से आए उधर नहीं जाने का, तो अभी मेरी तो स्कूल भी चालू हो गई है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची तुम भले वहीं जाओ जहाँ से आई हो और वहीं जाओ, और नलिनी दीदी को पास में बुला के कहा कि इसको तुम अपने साथ ही लेकर जाओ। तो मैंने बाबा को ये भी पूछ लिया कि बाबा एक महीना नहीं अच्छा लगेगा तो कैसे रहेंगी, अगर एक महीना नहीं अच्छा लगा तो सेंटर पर। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको नहीं अच्छा लगे तो तुम 8 दिन में भी घर जा सकती हो। तो मैं खुश हो गई बहुत, चलो बाबा ने छुट्टी दे दी हमको, भविष्य तो वो ही जानता है। तो फिर जब भी मैं आई सेंटर पर तो वो एक महीना क्या आज 50 वर्ष हो गए, घर जाने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि बाबा ने भेजा हुआ, बाबा ने ट्रेनिंग में रखा हुआ, तो उतना तो बाबा को रिटर्न देना हमारा फर्ज बनता है। तो इसीलिए वहां से मेरा सेंटर पे रहना चालू हुआ। फिर आगे बढ़ो तो वहाँ पे उस समय अपने संस्था में ये नियम था कि जो सेंटर से कन्या निकली है उस सेंटर पे उसको रहने का तो नहीं, कुछ भी हो जाए। तो मुझे पहले तो भेज दिया, लेकिन भेजने के बाद मुझे बोला गया कि तुमको सिर्फ जो है 1 वर्ष की छुट्टी मिल रही है। पहले तो घर जाने का बोला था मैंने, फिर अपने शौक से बोला कि मैं नहीं जाएगी, मुझे अच्छा लगने लगा। लगते लगते जब हमारा 8 महीना बीत गया तो मनमोहिनी दीदी जी का लेटर आया घाटकोपर में, शक्कू को भेज दो उनको दूसरे सेंटर पे भेजना है। अब मेरा दिल धक धक करने लगा, 15 वर्ष की आयु हो गई मेरी, आप इमेज करो 15 वर्ष की कोई बैठी है इधर। और उस समय पर मुझे बोला कि आप आओ और सेंटर पे दूसरे सेंटर पे जाना है, तो थोड़ा धक धक भी हुआ। फिर मैं आई इधर, तो यहाँ आने के बाद सारा प्रोग्राम भी बना, लेकिन कुछ ऐसा ड्रामा बन गया कि मुझे फिर से मुंबई भेजा गया। ये भी एक बाबा की मदद थी, कोई ना कोई ऐसा कारण बन गया, वो लंबी हिस्ट्री है। तो फिर उसके बाद वापस 2 महीना मनमोहिनी दीदी जी ने मेरे को छुट्टी दी कि 2 महीने की छुट्टी देती हूँ लेकिन फिर वापस बुलाऊंगी। तो ऐसे करके 1 वर्ष के बाद मेरा प्रोग्राम सीधा देहरादून का बना। अब कहाँ मुंबई, कहाँ देहरादून, बहुत आरात दिन का फर्क था। तो मैं वहां के लिए निकली और वहां पर तो इतनी ठंडी, और मुंबई में तो कभी शॉल भी नहीं ओढ़ी जाती है, पूरा मौसम भी चेंज, हर रीति से रस्म रिवाज भी सब चेंज थे। तो वहां पर मेरे को प्रेम दीदी जो थे, जो आज नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने पालना दी। तो 2-2.5 वर्ष तक मुझे प्रेम बहन की पालना मिली, और उस पालना में मुझे ये चांस मिला कि उन्हीं दिनों में देहरादून नीचे है और मसूरी ऊपर है, तो मसूरी में 6 महीने का प्रदर्शनी के लिए स्थान लिया गया था, और मुझे अकेले को 15 वर्ष की आयु में मसूरी में रखा, सिर्फ कोई माता दिया, और वो माता भी थोड़े थोड़े दिन में बदली होती थी। तो अभी मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था, कैसे चलाना, क्या करना, बाबा करवाते थे। और हमारा जो घाटकोपर में जब हम रहते थे, तभी थोड़े सेंटरों पर, हर सेंटर पर संदेशी थी, हर गुरुवार भोग संदेशी लगाती थी, और जिस जो भोग कराते थे उनको स्पेशल संदेश मिलता था। तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि गुरुवार बिना संदेशी के भी कोई भोग लगता है, मुझे ये भी मालूम नहीं था। तो देहरादून में गई तो वहां भी एक कुमारी थी, घर में रहती थी, पर वो संदेश लेके आती थी, वो ध्यान में जाती थी, तो वही भोग लगाती थी। तो वहां भी मुझे लगा यही सिस्टम है। अभी मसूरी में गई तो मसूरी में गुरुवार आवे तो बाबा को भोग तो लगाने का, कैसे लगाना, मैंने बहन जी को पूछा तो बोला बाबा को याद करने का, रखने का बाबा के आगे भोग और बाबा को याद करने का। मैं बोला ऐसे कैसे, बाबा ने भोग स्वीकार किया वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ा मेरे को पहले कंफ्यूजिंग हुआ। फिर मसूरी में जब मुझे ऐसे अकेला रहने का चांस मिला तो मेरे आगे बहुत कड़ी परीक्षाएं आई, और सबसे पहले तो मैं बाबा को साथ रख के बाबा को बोला कि मुझे आपसे दिव्य दृष्टि का वरदान चाहिए। मुझे समझता नहीं आप भोग स्वीकार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और मैं अपने मन की बात किसको बताऊं और कौन मुझे यहाँ जवाब देगा। तो बाबा ने मुझे वहाँ दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, तो ये मेरा एक पार्ट मसूरी में खुल गया, तो ये एक मुझे यादगार रह गया। अब वहाँ परीक्षाएं जो आई उसमें से 2 मिसाल आपको इसीलिए सुनाना चाहूंगी कि आपको सुन के वंडर लगेगा कि बाबा जो बोलते हैं मैं प्रवेश करके बच्चों में कार्य कराता हूँ, तो बाबा ने कैसे कराया। वहां पर एक तो आर्य समाजी लोग बहुत थे, और हमको जो जगह मिली थी उसके पड़ोस में वो रहते थे, तो वो बड़ी बड़ी दीवारों में कागज में लिख के चिपका के जाते थे, परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा 84 लाख योनियां लेती है, गीता का भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा चिपका के जाते थे। अब मैं छोटी थी, पर जैसे भी बाबा ने करवाया तो बाबा करण करावे नहारे, तो हम लोग क्या करते थे, कागज उठा उठा के फाड़ते थे। तकलीफ तो उनको ज्यादा होती थी ना, लिखना और चिपकाना, हमको तो खाली निकाल के फाड़ना ही होता था। तो इसीलिए जो है वो इस प्रकार उन्होंने सामना करना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, रोड पर 1-2 भाई रखे और एक बहुत गंदे गंदे पर्चे छपाए जिसमें ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत बुरा बुरा लिखा, एकदम से नेगेटिव कि कैसे सब यहाँ पे जादू करते हैं, ये करते वो करते, यहाँ पाँव नहीं रखना चाहिए, बहुत कुछ लिखा। तो क्या था कि हमारे पास भी दो भाई देहरादून से आते थे टर्न बाय टर्न मदद करने, तो पर्चे बांटने के लिए खड़े होते थे। तो अभी हमारा भी भाई पर्चा बांटता था, उनका भाई उनको ही पर्चा देता था। तो जब भी एक बार जो है वो एक भाई प्रदर्शनी देखने आया और आकर के फिर मुझे बताया कि देखो बहन जी, बाहर ये भी पर्चा मिल रहा है लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात मुझे दिखने में नहीं आई। तो मैंने कहा देखो अभी आप खुद ही फैसला करो। तो क्या था, उन दिनों में एक मसूरी का बहुत बड़ा, जिसको राजा ही कहा जाए, ऐसा एक विशेष व्यक्ति था। उसने अपने घर में प्रेम धर्म नाम से एक खोल के रखा था। हर रविवार को सब धर्म के बड़े बड़े लोग आते थे, तो उसमें आर्य समाज जी भी आते थे। तो उसने प्रदर्शनी देखी तो उसको अच्छा लगा, तो उसने मेरे को कहा कि आप प्रति रविवार को वहाँ पे आओ और थोड़ा 10 मिनट बोलो। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैं रविवार को वहाँ जाने लगी, तो जब मेरा भाषण वो लोग 15 वर्ष की आयु में सुनने लगे आर्य समाजी, तो जल गए अंदर पूरा कि इतनी छोटी बच्ची है और इतना ललकार से क्या क्या बोलती है। तो उनको जो है बहुत अंदर वो होने लगा। और उसमें फिर क्या हुआ कि उनका ही एक यूथ भाई वो कोर्स करने आया, कोर्स करके वो पक्का ब्रह्मा कुमार बन गया। उसने वहाँ छोड़ दिया जाना तो और उनको गुस्सा आ गया, तो इसलिए वो और बदला लेने लगे। तो जब मैं रविवार को भाषण करने जाती थी और मुझे मालूम पड़ा कि ये पर्चा अलग अलग ये लोग बांटते हैं, तो मैंने जाकर के रविवार को बोला कि भाषण करने के बाद कि मैं किन शब्दों में हमारे आर्य समाजी भाई बहनों को धन्यवाद दूं, थैंक्स दूं, जो वो हमें हमारी प्रदर्शनी में आने के लिए पब्लिसिटी के लिए बहुत मदद कर रहे। क्योंकि व्यक्तियों को दो टाइप का जब पर्चा मिलता है तो हिल स्टेशन पे तो लोग घूमने आते हैं, हाँ हनीमून मनाने आते हैं। अभी यहाँ अगर हम उनको प्रदर्शनी का पर्चा देते तो कहते इधर भगवान का नाम कौन लेगा, यहाँ तो हम घूमने आए हैं। लेकिन जब ये दो पर्चे अलग अलग ढंग के मिलते हैं तो सोचते हैं चलो इधर तक आए हैं तो देख के ही आ जावे ना कि आखिर भी सच क्या है और झूठ क्या है। तो न आने वाले लोग भी आते तो मदद कर रहे, तो आर्य समाजियों की तो हमको बहुत मदद मिल रही है। तो ऐसा मैंने उनको हंसते हंसते बताया। फिर वो हमारे पास आने लगी, बोला बेटा देखो तुम्हारी जैसी बहन अगर हमारे आर्य समाज में आ जाए तो आज देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा आपकी जैसी बहनें अगर ब्रह्मा कुमारी बन जाए तो कितना विश्व का कल्याण हो जाएगा। फिर वो दयानंद आदि का सब किताब भी लेके मुझे देने लगी, आप पढ़ो ये करो। फिर एक बार की बात है कि वहाँ पर एक साधु आया, तो उस साधु को उन्होंने अपने पास बुलाया आर्य समाजी मंदिर में और खूब भड़काया कि देखो ऐसी ऐसी एक बहन प्रेम धर्म में आती है, छोटी बच्ची है लेकिन बहुत ललकार से बोलती है, आपको क्या करना है ये रविवार को उधर आने का, ब्रह्मा कुमारी के पहले मत बोलना, उसके बाद ही बोलना, और जो भी वो बोले उसको काट देना। तो बोला ठीक है, मैं तो ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना है, मालूम है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी हम गए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, तो जब भी हम गए हमारे बाजू में वो बैठा साधु, तो मैंने उनको बोला नमस्ते किया, उन्होंने किया, तो मैं तो हमेशा लास्ट में बोलती थी। तो उस दिन उन्होंने कहा हम तो आज ब्रह्मा कुमारी बहन का सुनने आए हैं, आज तो हम पहले बहन जी का सुनेंगे। तो उस व्यक्ति ने जो रखता था उन्होंने बोला दीदी आपको आज बोलना होगा पहले। मैंने कहा चलेगा। तो अनायास मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि हमारी आत्मा का स्वधर्म क्या है। आज दुनिया में कितने धर्म बट गए हैं लेकिन सही धर्म क्या है आत्मा का, और ब्रह्मा कुमारी द्वारा कैसे परमात्मा शांति की स्थापना करते हैं। स्वधर्म शांति और पवित्रता है। तो फिर मेरे बोलने के बाद उसने बोला अरे बहन जी का सुनने के बाद हमको दिल करता है हम भी बोले। तो उनको भी फिर माइक दिया तो उसके आगे टेबल था, तो वो टेबल पे ठोक ठोक के जोर जोर से बोलने लगा। बोला ब्रह्मा कुमारी बहन ने कहा कि धर्म का अर्थ है धारणा, मैं कहता हूँ कौन कहता है धर्म का अर्थ है धारणा, ऐसा जोर जोर से ठोक के। ये ब्रह्मा कुमारियां कहती है हम दुनिया में शांति स्थापन करेंगे, मैं पूछता हूँ कौन कहता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां विश्व में शांति स्थापन करेगी। और वो आर्य समाजी वाह साधु वाह, वाह महात्मा जी वाह, वाह गुरु जी वाह, ऐसा ताली बजाने लगे। और मैं 15 वर्ष की, सोचो आप क्या माइंड कैसे बाबा चलाता है। मैं मुस्कुराती रही, देखती रही। फिर पूरा होने के बाद जो है मैंने कहा कि देखो यहाँ हमारी प्रदर्शनी है, तो आपको समय है तो आप आइए, कल आ सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ आऊंगा आपका, मैंने अमृतसर में भी ऐसे देखा हुआ है। मैंने कहा इधर आइएगा। तो दूसरे दिन जब वो आया, मैंने एक व्यक्ति को भी बुला के रखा था जो आर्य समाजी ब्रह्मा कुमार बनना था। तो जब भी वो आया तो मैं भी उनके सामने टेबल पर बैठी। तो मैंने कहा कि आपको मालूम है यहाँ मैंने आपको क्यों बुलाया है? तो बोला हाँ ये प्रदर्शनी देखने के लिए। मैंने कहा नहीं, प्रदर्शनी तो आपने बोला ना अमृतसर में भी देखी है, मुझे पता है। तो बोला फिर आपने क्यों बुलाया है? मैंने कहा मैंने इसीलिए बुलाया है कि कल जो आपने वहाँ पर भाषण किया, मेरे भाषण के बाद उसमें मुझे कुछ संशय उठा है, कुछ प्रश्न उठा है, वो मैं आपको पूछना चाहती हूँ। बोला ब्रह्मा कुमारी बहन जी आपके मन में संशय ये कैसे हो सकता? मैंने कहा मुझे ही उसका भी वंडर लग रहा है, पर अभी उठा है तो मुझे पूछना है। बोला अच्छा अच्छा पूछिए। मैंने कहा देखो मैंने बताया कि धर्म का अर्थ है धारणा, और आपने फिर उसके रिस्पॉन्ड में बोला कि कौन कहता है धर्म का अर्थ है धारणा। तो मेरे पास भी टेबल था तो मैंने भी बोला कि आपने तो ये बता दिया कि कौन कहता है धर्म का अर्थ है धारणा, कोई बात नहीं, पर मेरा प्रश्न ये है जब आपने ये बताया तो ये क्यों नहीं बताया कि धर्म का अर्थ है क्या? समस्या तो खड़ी कर दी, समाधान तो किया नहीं। आपने बोला कि ब्रह्मा कुमारियां बोलती है शांति स्थापन करेंगे, कौन कहता है? ठीक है तो विश्व में शांति कैसे स्थापन होगी, वो तो जवाब आपने दिया नहीं। बोला अरे ब्रह्मा कुमारी बहन जी आपकी तो मुझे बहुत महिमा करनी थी, ये था वो था। मैं बोला महिमा महिमा भूल जाओ, महिमा एक ही परमात्मा की करो, हमारी भी कोई महिमा नहीं है, अभी तो आपके पास टाइम है ना। बोला कल मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा अभी तो टाइम है ना, अभी मुझे जवाब दो, अभी का अभी मुझे जवाब दो, और या तो फिर स्वीकार करो, क्योंकि हम भी जो ज्ञान सुना रहे हमारा नहीं सुना रहे, हमें जो परमात्मा ने सत्य बताया वही आपको बता रहे हैं। आप एग्री करो मैं आपको सुनाऊंगी, और मैं भी उनका सुनाऊंगी, मेरा कोई अपना ज्ञान नहीं है। तो उसको मैंने झुकाया। फिर ये समाचार प्रकाश मणि दादी के पास पहुंचा, क्योंकि तभी संस्था में साधु संन्यासियों की सेवाएं इतनी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। और इतने में उनके अपोजिट एक दूसरा साधु आया, तो वो साधु इतना अच्छा था कि कोर्स करने के बाद मुरली सुनने आने लगा और माँ माँ कहने लगा। तो जब भी प्रकाशमणि दादी जी को ये समाचार गए, तो दादी जी उन दिनों में टूर पर निकली थी पंजाब तरफ, निकलने वाली थी, और देहरादून को 9 वर्ष हुआ था सेंटर खुले तभी, और दादी ने पांव भी नहीं रखा था। तो दादी ने सामने से प्रोग्राम दिया कि मैं मसूरी आऊंगी और मैं शक्कू के पास जाऊंगी, दादी ने प्रोग्राम दिया। तो उस कारण देहरादून में दादी का पहला पांव पड़ा, तो ये भी उनको अच्छा लगा। तो जब ही दादी जी आए, देहरादून नीचे था मसूरी ऊपर थी, दादी ने बोला पहले मैं शक्कू के पास जाएगी फिर मैं देहरादून आएगी। दादी सीधा मेरे पास आई, और जब दादी आई तो साधु ने दादी का बहुत दिल से स्वागत किया, और पूरा दादी के आगे झुक झुक कर माँ माँ बोलकर बहुत नम्रता से दादी से ये किया। दादी को इतना वंडर लगा कि जब दादी यहाँ आई तो यहाँ बगीचे में बड़ी बहनों की मीटिंग चल रही थी तो दादी ने सभी बड़ी बहनों को मेरा समाचार सुनाया, वो मुझे बाद में पता चला। तो ये एक अनुभव मसूरी में, बहुत सारे अनुभव हैं पर अपने पास अभी समय नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट सुनाया। फिर हमारा चांस लगा जानकी दादी के पास भी रहने को मिला पूना में, 4-5 महीना दादी जानकी के पास रह के भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और 4-5 महीना हमको अहमदाबाद में सरला दीदी के पास रहने को मिला। हरेक ने चाहा कि शकू बहन हमारे पास रहे, परंतु जब जब मैं मुंबई गई तो नलिनी दीदी को भी फिर आवश्यकता रहती थी हैंड की, तो उन्होंने कहा कि हमको भी जरूरत है, इसलिए फिर जा नहीं पाई। तो ये भी मुझे एक खुशी रही कि दादियों के साथ रतन मुनि दादी जी की बहुत बहुत पालना ली है। फिर कोलाबा में पुष्प शांता दादी और उनकी लौकिक बहन आतम मुनि दादी, उनकी पालना ली है। फिर सायन में ब्रह्मा बाबा की लौकिक बहू ब्रिजिंद्रा दादी रहते थे, उनकी पालना ली है। मनमोहिनी दीदी की बहन थे शील दादी, उनकी पालना ली है। उन दोनों की लौकिक माँ थी जिनको क्वीन मदर बोलते थे, दिखने में भी वो क्वीन थी एकदम। और वो मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरे को बोलती थी मिचिनू। अभी 3-4 दिन पहले बाबा की मुरली में आया कि मैं जाके ऐसा मिचिनू बनूंगा बाबा बोलता है ना, तो मुझे क्वीन मदर हमेशा मिचिनू बोलती थी, छोटी दिखती थी इसीलिए। तो उन्हों का काफी हमको पालना मिली, और उसके बाद ये सब अनुभव करते 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 आज 40 से 42 वर्ष हुए हैं। घाटकोपर सब जोन के कनेक्शन में डोंबिवली की ब्रांच है, वहां पर सेवा में मुझे दीदी जी ने निमित्त बनाया है, और पूरा जो जोन है तो दीदी जी की राइट हैंड बनकर के जो भी एक्टिविटीज चलती हैं उनको हम देखते हैं। तो बाबा मम्मा की पालना, दादियों की पालना, उसमें ये हमने अंतर देखा है कि जो दादियों की पालना से रग रग में कण कण में बाबा के प्रति प्रेम स्नेह लगन और निश्चय है, वो पीछे आने वाली जो जनरेशन है उसमें हम थोड़ा फर्क देखते हैं। आज हम एक सेकंड में बैठते हैं और बाबा के पास चले जाते हैं, योग लगाने को कोई जैसे लगा ही पड़ा है, तकलीफ ही नहीं होती है। और आज जो बाबा के बच्चे और बढ़ते जाते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी सब मिक्स होती जाती है, तो हम देखते हैं कि उनको योग में भी तकलीफ होती है और धारणाओं में भी, योग में तकलीफ होगी तो धारणाओं में भी तकलीफ होगी। हम लोग जब भी क्लास में जाते थे तो हमें ये रहता था पहला लाइन में मेरा नंबर आना चाहिए, और आज पीछे 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 पीछे, बाबा जितना पीछे बैठने को मिले उतना अच्छा है। दृष्टि लेने के लिए हम तड़पते थे, दीदी की दृष्टि मेरे पर ही ज्यादा जानी चाहिए, दीदी की दृष्टि, अभी तो सोचते हमारे पर पड़े ही नहीं तो अच्छा है, या तो फिर ऐसे बैठे होंगे, ऐसा बैठे होंगे, ऐसा बैठे होंगे, तो वो अनुभव भी नहीं होता है। बहुत फर्क आ गया है, जमीन आसमान का, रात दिन का फर्क मैं देखती हूँ। तो वो अभी बहुत जरूरी है, समय का इशारा है। अगर अब भी हम योग के अभ्यास को अच्छी तरह नहीं बढ़ाएंगे, एक रस स्थिति नहीं बना पाएंगे, अभी देखो बाबा की पढ़ाई पूरी हो गई, अब धर्मराज का पार्ट भी स्टार्ट हो गया है और बढ़ेगा, विनाश एकदम शुरू हो गया है। तो अब भी अगर हमने हमारे हाथ में आए हुए पल सेकंड गंवाए हैं तो हमारे हाथ में पश्चाताप आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा जैसे कहते हैं, हर बात की बाबा की श्रीमत को अंडरलाइन करें, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करें, योग को बढ़ाएं, बाबा की मुरली बहुत ध्यान से अध्ययन करें। हम जो बाबा की मुरली से सुख लेते आज मैं देखती हूँ वो रहा ही नहीं है, या तो सीधी मुरली पढ़ लेंगे, या तो मोबाइल में मुरली है, पीस ऑफ माइंड में मुरली है, इधर मुरली है, चलते फिरते मुरली सुन लेते। एक एक लाइन बाबा की मुरली की सुन के पढ़ के, बस पूरा कर रही हूँ, सुन के पढ़ के और उसका अंदर ही अंदर पहले खुद हम चेक करें, बाबा से बात करें, तो उस मुरली का जो पूरा रस है ना वो हम ले सकते हैं। तभी समय है, समय शरीर में नाखून के बराबर भी बचा नहीं है अभी, तो जो समय मिला है गैलप करें ताकि कल्प कल्प की हमारी नींद हो जाए। बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा हम जो बता पाए वो बताए, दोबारा कभी समय मिलेगा तो और बातें करेंगे। ओम शांति।
प्रभु।